समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवा।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण के अवसर पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार मनोज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स हु आर विद अस दिस लवली ट्यूसडे मॉर्निंग। यस फ्रेंड्स, स्टे ऑन एंड एंजॉय अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो मनोज, वी बिगिन नाउ विथ सम न्यूज हेडलाइंस।
जी,
Prime Minister Narendra Modi will visit Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, Uttar Pradesh today to mark a momentous occasion in the nation's socio-cultural and spiritual landscape. Prime Minister will ceremonially hoist a saffron flag on the shikhar of the sacred Sri Ram Janmabhoomi temple, symbolizing the completion of the temple's construction and ushering in a new chapter of cultural celebration and national unity. Prime Minister will also address the gathering on this occasion. Prime Minister will also visit Sapt Mandir, which houses temples related to Maharshi Vasishtha, Maharshi Vishwamitra, Maharshi Agastya, Maharshi Valmiki, Devi Ahilya, Nishad Raj Guha and Mata Shabri. This will be followed by a visit to Sheshavatar Mandir. Mr. Modi will also visit Mata Annapurna Mandir. After this, he will perform darshan and puja at Ram Darbar Garbhagriha, which will be followed by darshan at Ram Lala Garbhagriha. Our correspondent has filed this report.
Dhwajarohan program is taking place on the auspicious Panchami of the Shukla Paksh in the month of March Shirsh, coinciding with the Abhijit Muhurt of Sri Ram and Mata Sita's Vivaha Panchami. The date also marks the martyrdom day of Guru Tegh Bahadurji, the ninth Sikh Guru, who meditated in Ayodhya for 48 uninterrupted hours in the 17th century. The right-angle triangular flag, measuring 10 feet in height and 20 feet in length, bears the image of a radiant sun, symbolizing the brilliance and valor of Bhagwan Sri Ram, with an Om inscribed on it, along with the image of Kovindra tree. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Ayodhya.
इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे भगवान कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाए गए नव निर्मित भवन पांचजन्य का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है।
In Chhattisgarh, 15 active cadres of outlawed CPI Maoists carrying a combined bounty of nearly 50 lakh rupees laid down arms in Sukma district yesterday. The group, comprising 10 men and 5 women, formally surrendered before Sukma Superintendent of Police Kiran Chavan at the district police headquarters. Among them were 4 hardcore members of the dreaded People's Liberation Guerrilla Army Battalion No. 1, PPCM Madhvi Sanna, Sodi Hidme, Suryam alias Rava Soma and Meena alias Madhvi Bhime, each carrying a reward of 8 lakh rupees on their heads. Speaking to reporters, S.B. Chavan said the surrenders were a direct fallout of the leadership vacuum and deepening fear created by most wanted Maoist commander Madhvi Hidma's elimination earlier this month.
इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठते धुएं और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब को पार कर गया। इससे दृश्यता में कमी आई है और इसके पूर्व की ओर बढ़ने के साथ हवाई यातायात बाधित हुआ है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कल विमान संचालन कंपनियों और हवाई अड्डों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच अकासा एयर इंडिगो और केएलएम विमानन कंपनियों ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को लगभग 10,000 वर्षों में पहली बार फटा। इससे लाल सागर के पार ओमान और यमन की ओर विशाल राख का गुबार उठा और पूर्व की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि बादल की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक है। ये गुबार पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इससे भारत में ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका कम है।
A high-level Afghan delegation met officials at the Ministry of Textiles in New Delhi yesterday to explore the possibilities for expanding bilateral cooperation in the textile sector. The delegation, led by Shafiullah Azam, Director General of Economic Relations, held discussions with A. Bipin Menon, Trade Advisor to the Government of India. The talks focused on strengthening Afghanistan's textile ecosystem, generating employment, and improving training facilities for farmers entering the cotton and textile value chain.
गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में सिनेमा प्रेमी सुबह से शाम तक स्क्रीनिंग और रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्मोत्सव में देश विदेश की फिल्मों के साथ क्षेत्रीय सिनेमा को भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
इफ्फी में महिलाओं की आंतरिक संवेदनाओं और भावनाओं पर केंद्रित कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें द विजुअल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो प्रमुख है और ध्यान आकर्षित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में स्लोवाक फिल्म फ्लड भी शामिल है। वहीं लाला एंड पॉपी और द परस्यूट ऑफ स्प्रिंग जैसी गैर मुख्यधारा की फिल्मों के निर्माताओं का कहना है कि कैसे उनका सिनेमा न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि लोगों के मन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ेगा। इसके अलावा कई क्षेत्रीय और छोटी समयावधि की अलग अलग मुद्दों को उजागर करती हुई फिल्में भी आकर्षण का केंद्र है। ब्रजभाषा की फिल्म विमुक्त बनाने वाले कलाकारों ने क्षेत्रीय सिनेमा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय फिल्मों में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिन्हें सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। सिनेमा प्रेमियों को कल कन्नड़ हॉरर फिल्म रुधिर वर्ण दिखाई गई, जिसके निर्देशक अग्नि और अभिनेत्री पमला गौड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पूरी तरह से गोवा में फिल्माई गई कोंकणी लघु फिल्म घर ने लोगों का दिल जीत लिया। ये फिल्म इस विचार को दर्शाती है कि एक घर सिर्फ चार दीवारों से कहीं बढ़कर होता है। ये जीवन भावनाओं और मानवीय जुड़ाव से भरा एक स्थान है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल में लड़ी गई लड़ाइयों को दर्शाती एक मणिपुरी डॉक्यूमेंट्री बैटलफील्ड का विश्व प्रीमियर भारतीय पैनोरमा खंड में हुआ। ये फिल्म मणिपुर की जनता और द्वितीय विश्व युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाती है। एक ऐसा विषय जो अक्सर युद्धों के वैश्विक ध्यान केंद्रित होने के कारण दब जाता है। शाम के समय कल कला अकादमी में दास्तान गुरुदत्त की संगीत में प्रस्तुति हुई, जिसने इस प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की जीवन यात्रा को दर्शकों के सामने रखा। वहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संगीतमय कार्यक्रम इफिएस्टा का कल शानदार समापन हुआ। इस कार्यक्रम में महान अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी दी गई। उनके लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित दर्शकों और कलाकारों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद भी उपस्थित थे। संगीतमय कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन श्री धर्मेंद्र के फिल्म की गीत से हुआ। संगीत और कला को एक साथ पिरोने वाले चार दिवसीय इस भव्य आयोजन में ओशो जैन, वुसत इकबाल खान जैसे कलाकारों और स्वास्तिक MH43 द वैरागी तथा नाइट एंटरटेनर्स जैसे बैंड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। देवस फिल्म बाजार का भी कल समापन हुआ, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को $40,000 से अधिक के नकद अनुदान और पुरस्कार प्रदान किए गए। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। ढाका में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने ताइवान को 35-28 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को इस जीत की बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। महानगरों के समाचारों का।
Yes, Manoj, starting with Chennai news, the Venu Bappu Observatory of the Indian Institute of Astrophysics hosted a large-scale student outreach program yesterday as a curtain-raiser event for the upcoming India International Science Festival next year. The observatory welcomed nearly 500 students and 50 teachers from around 190 different government schools in Thiruvannamalai district. This visit, with an aim to provide real-world scientific exposure to school children, was aligned with the national outreach activities leading to IISF 2025. It will be held from December 6 to 9 at Panchkula, Haryana, and is open to everyone to participate.
अब दिल्ली की खबर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बड़ौत स्टेशन पर दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू ट्रेन सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू सेवाओं के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के दैनिक यात्री, विद्यार्थी, किसानों को बेहतर गतिशीलता का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि मेमू ट्रेन विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
एंड गोइंग टू हैदराबाद नाउ, Department of Space Secretary and Chairman of Indian Space Research Organisation ISRO, Dr. V. Narayanan, praised Indian Railways for its role in the nation's growth and said that being associated with Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunications, IRISET, is a dream for many engineers. Delivering the keynote address at the 68th annual celebrations of the IRISET, a globally recognized rail training institute in Secunderabad, Dr. Narayanan highlighted that rapid technological advancement will soon enable real-time monitoring of all trains on the Indian railway network. He stressed that communication is crucial for safe train operations and noted that ISRO satellites are playing a major role in providing the required communication support. He added that the country has the best camera on the moon and remains the first nation to achieve a soft landing on the lunar South Pole. The chairman also said ISRO and Indian Railways will collaborate further in the coming years on new technological initiatives.
अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल IIT बॉम्बे में लिक्विड हीलियम सुविधा का उद्घाटन करते हुए अग्रणी तकनीकों को आगे बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। MRI सिस्टम और क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए लिक्विड हीलियम के अपरिहार्य होने का उल्लेख करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि नई सुविधा एक कुशल हीलियम रिकवरी सिस्टम से लैस है, जिससे क्रायोजेनिक प्रयोगों की लागत वर्तमान खर्चों के लगभग 10वें हिस्से तक कम होने की उम्मीद है, जबकि इससे दुनिया के सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक का संरक्षण भी होगा। उन्होंने भारत के स्वदेशी क्वांटम सेंसिंग और इमेजिंग प्लेटफॉर्म की पहली श्रृंखला की समीक्षा करने के लिए क्वांटम रिसर्च लैब का भी दौरा किया, जो देश की अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का संकेत है। श्री सिंह ने IIT बॉम्बे के पीक्वेस्ट ग्रुप द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का भी अवलोकन किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि IIT बॉम्बे का कार्य ये दर्शाता है कि किस प्रकार शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग मिलकर एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं, जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों को आकार देने में सक्षम हो।
And Manoj, now I'm going to Bengaluru Metro. Visveshwaraya Technological University AI and Data Science Branch in Karnataka has secured fifth position among the top five teams in a prestigious hackathon jointly organized by IIIT Dharwad and IIT Dharwad. Over 125 teams representing 80 colleges across the states had participated in this largest coding competition in North Karnataka. The three students of Visveshwaraya University, namely Piyush, Adhika and Prajwal, stood out for their innovative solutions and technical expertise. These students will be provided an opportunity to be incubated at IIIT and IIT Dharwad and given support for their ideas to fructify and their entrepreneurial ventures succeed in the future. They also received 1 lakh rupees worth full stack development course sponsored by Algorithm 365 for enhancing their skill set. And Manoj?
पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत डेटा अपलोड करने में सर्वर की समस्या से निपटने के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जिला चुनाव अधिकारी ये पता लगा सकते हैं कि सर्वर कहां खराब हो रहा है। इस चुनाव ऐप के जरिए 8 दूर संचार कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि सर्वर की धीमी गति के कारण पुनरीक्षण के निष्पादन में कोई देरी नहीं हो सकती। अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। बात करें तापमान की तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 26 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 28. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius. And Manoj, before we go with start with the events, okay. Let's talk about an important day. Damn it is, friends, for women who experience abuse and feel unsafe to speak out and challenge those offenders. United Nations marked 25th November as International Day for the Elimination of Violence Against Women to raise, of course, public awareness of violence against women. The UN Secretary General's Unite to End Violence Against Women campaign is aimed at preventing, eliminating violence against women and girls. So, ladies and girls, you need not fear. You just go out, you know, of your homes, realize your dreams and goals. Manoj?
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 25 नवंबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1975 में आज ही के दिन सूरीनाम आजाद हुआ था।
And 1783, the last British troops left New York City following the American Revolutionary War. And of course, this date is known as Evacuation Day and is signified the end of British rule in the United States.
1941 में आज ही के दिन लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली थी।
And 1948, cable television was invented by Leroy Ed Parsons, who sold electronics and ran a radio station in Astoria, Oregon, on Thanksgiving Day. And 1949, Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of India's constitution, delivered his concluding speech to the Constituent Assembly.
आज ही के दिन 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया। 2018 में आज ही के दिन यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने पर हामी भरी। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। लेकिन उससे पहले हिंदी सिनेमा के चहेते अभिनेताओं में से एक हीमैन धर्मेंद्र का कल निधन हो गया। आइए सुनते हैं उनके फिल्मी सफर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
तेरी दुनिया से आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं आखिरी गीत।
द ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र केवल कृष्ण दियोल।
और हूं मैं
नहीं भैया,
अब मैं नहीं चाहता मुझे अकेले की वजह से इन सब की जाने जाए। और अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर जिंदगी लिखी है तो मार नहीं सकता।
भैया मैं भी आप
देखिए, माँ का ख्याल रखना।
From a small village in Punjab to becoming a superstar, Dharmendra's life is a story of hard work, talent and charm, especially noted for his powerful dialogue delivery and ability to portray a wide range of characters. Dharmendra was counted among Bollywood's reigning stars in the 1960s and 70s. Dharmendra made his film debut in 1960 with Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere. His breakthrough came in 1966 with Phool Aur Patthar, which made him a leading man in Bollywood. Initially known for romantic roles, Dharmendra quickly became famous for action movies. With fine stride and vulnerability in his eyes, Dharmendra shaped a masculinity made of beautiful contradictions. Films like Mera Gaon, Mera Desh, Rakhwala and Jugnu showed his dominance on screen. In the 1970s and 1980s, he worked with top actors and actresses and starred in classics like Sholay, where his role as Veeru is still remembered.
मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
His career spanning over 6 decades and encompassing more than 300 films has cemented his status as a Bollywood legend, initially gaining recognition in the mid-1960s with films like Aayi Milan Ki Bela and Phool Aur Patthar. Dharmendra's charisma and on-screen persona earned him the moniker Garam Dharam, reflecting his roles. His success continued through the late 1960s and 1980s with hits such as Aankhe, Sholay and Sita Aur Geeta. These films showcased his versatility, portraying both romantic leads and powerful characters. Later in his career, Dharmendra transitioned to character roles, appearing in films like Pyar Kiya to Darna Kiya, Life in a Metro, and the recent Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. His natural charm and powerful screen presence earned him millions of fans worldwide. Dharmendra has received several honors for his contribution to cinema and was awarded India's third highest civilian honor, Padma Bhushan, by the Government of India in 2012. Dharmendra's journey from a small town boy to a Bollywood legend is inspiring. He acted in romantic dramas, action-packed films and comedies, leaving a lasting mark on Indian cinema.
Apni nazaron mein uthkar dekh bande, apni nazaron mein uthkar dekh bande, duniya tujhe aankhon pe bithayegi, gaayegi nagme teri azmat ke, pairon mein jhukkar tere daman bithayegi.
And friends, Scottish singer-songwriter Lane Sutherland, who helped compose Sir Rod Stewart's 1975 hit song Sailing, passed away this day in 2019. Sutherland and his brother Gavin recorded the song in 1972 before it became a worldwide hit for Sir Rod. The brothers worked as a folk group, Sutherland Brothers Band, and later combined with a local rock band, Quiver, and billed themselves as the Sutherland Brothers and Quiver. You're listening to the song Sailing.
To be near you, to be free, I am flying. The sky. I am flying.
आज पुण्यतिथि है सितारा देवी की। उनका जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। वे भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना थीं। उनका नाम कथक नृत्यांगना के रूप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे जिस मुकाम पर थीं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। बहुत कम लोग जानते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में उनका नृत्य देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था। आज भी लोग इसी खिताब से उनका परिचय कराते हैं। इसके अतिरिक्त सितारा देवी के खाते में पद्मश्री और कालिदास सम्मान भी है, जो कथक के प्रति उनकी सच्ची लगन और मेहनत को दर्शाते हैं। आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ अंश।
सितारा जी, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्वीन ऑफ कथक कब से माना गया?
खैर, क्वीन ऑफ कथक तो मैं अपने मुँह से कह नहीं सकती हूँ। मुझे ये जो खिताब मिला है ये हमारे गुरुओं के कारण, हमारे पिताजी आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी, जिन्होंने बचपन से हमें ट्रेनिंग दी।
एंड फ्रेंड्स, दिस नवंबर डे वी आल्सो लॉस्ट अ मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस, सिंगर, कोरियोग्राफर हु रूल्ड द 1980s रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमास एंड थिएटर विद अ पावरफुल वोकल्स एंड मैग्नेटिक स्टेज प्रेजेंस। आइरीन करा'स जर्नी बिगन एट अ यंग एज when she showcased her singing and dancing talents in various talent shows, theatrical productions. Her breakthrough came in 1980 when she starred as Coco Hernandez in the film Fame. The movie's theme song Fame, which she co-wrote and performed, became an international hit, of course, and earned her an Academy Award for Best Original Song. And again in 1983, Kara achieved another major success with Flashdance, What a Feeling, from the film Flashdance. The song, co-written by Kara, reached number one on the Billboard and won her another Academy Award, Best Original Song. It remains one of her most iconic performances. You are listening to it right now.
आज पुण्यतिथि है चंदूलाल जयसिंह भाई शाह की। उनका जन्म 13 अप्रैल 1898 को गुजरात में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। उन्हें भारतीय सिने इतिहास की प्रसिद्ध हस्तियों में गिना जाता है। वे एक प्रकार से संयोगवश ही फिल्मों में आए थे। उन्होंने अपने दौर के सबसे कुशल व्यावसायिक फिल्मकार बनकर सबको चमत्कृत कर दिया था। संयोग से ही सही, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद चंदूलाल शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उस क्षेत्र में नहीं आए होते तो हिंदी के व्यावसायिक सिनेमा का नुकसान ही होता, क्योंकि आज हिंदी का व्यावसायिक सिनेमा जिस तरह का है उसमें एक बड़ी भूमिका चंदूलाल शाह जैसे प्रयोगवादी फिल्मकारों की भी है। आइए सुनते हैं उनके फिल्म का एक गीत।
And today is the birthday of lady cricketer Jhulan Goswami, famous Indian lady cricketer, of course. And she was known as Nadia Express. Of course, she's won in many times. She's won awards with her superb bowling. She's the highest wicket taker in one-day international cricket. And also, friends, 1960s singer Amy Grant is born in Augusta, Georgia. The Christian gospel singer makes a controversial transition to secular music with number one pop single, The Next Time I Fall and Baby, Baby. And just a snippet of that one here.
आज जयंती है भारतीय गायिका और गीतकार सुरिंदर कौर की। उनका जन्म 25 नवंबर 1929 को पंजाब के लाहौर में हुआ था। उन्होंने 1948 और 1952 के बीच कई हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायिका के रूप में गीत भी गाए हैं। उन्हें पंजाबी संगीत में उनके योगदान के लिए पंजाब की कोकिला नाम दिया गया। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया। हालांकि उन्होंने अधिकतर पंजाबी लोकगीत गाए, जहां उन्हें इस शैली को आगे बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
मेरे
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।